अपने अखड़पन, रूखे व्यवहार और सख्त लहजे के लिए मशहूर बंसीलाल का दिल कोमल भी हो सकता था, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो सड़क मार्ग से चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे। उनके प्रधान सचिव रहे और बाद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने एस के मिश्रा याद करते हैं।
अम्बाला में एक महिला लेट गई सड़क पे, रो रही थी, गाड़ी रोकती, उसने कहा मेरा बेटा जो है उसको फांसी की सजा हुई थी और उसका पिटीशन, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गया और दो रोज में वो एग्जीक्यूट होने लगा। तो बंसीलाल ने कहा इसमें अब मैं कुछ करने से, तो गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया, दैट्स द लास्ट कोर्ट अपील। खैर बड़ी मुश्किल से उसको हटाया, फिर कहने लगे इसके लड़के ने जुर्म किया हो, जो भी किया हो, लेकिन उसको देखा जाए मदर के एंगल से, उसके ऊपर क्या बीत रही है। खैर बात खत्म। एग्लोर अखबार में देखा कि वो प्रिजनर एस्केप कर गया जेल से। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था।
अच्छा।
जेलर बस वहां से ट्रांसफर हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ।
बंसीलाल के बारे में मशहूर था कि वो एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते थे और महीने में 25 दिन हरियाणा के अलग अलग जगहों का दौरा किया करते थे। गांव-गांव में पानी, बिजली और सड़क पहुंचाने के लिए उन्हें हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। वास्तव में ये उनका एक तरह से जुनून भी था। बंसीलाल यमुना के पानी को हर हालत में दक्षिण हरियाणा के रेतीले टीलों के पार पहुंचाना चाहते थे। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और माई इनकाउंटर्स विद थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा के लेखक राम वर्मा बताते हैं।
एक जुई उनके एरिया में है, तो शाम में वहां तक 7 लिफ्ट लगा के वो नहर गई। जगजीवन राम आए थे पहला जो है उसका उद्घाटन करने, तो भिवानी तो सारा एरिया वहां पर था उद्घाटन के लिए। उसने जब बटन दबाया और वो पानी नीचे से ऊपर, आप देखो सारी की सारी जनता जो स्टेज पे देखने के लिए खड़े, जा करके उसमें आधे लोग तो उसमें ही छलांग मार गए। लेडीज ने वो बंसीलाल पे गाने बनाए कि यानी भगीरथ लाया था तो तू हमारा भगीरथ है, इस तरह के गाने बनाए। तो ये फिर उसने बाद में सारा बाकी एरिया को भी आगे, फिर वो नारनौल तक, अब जो है सारा हरियाणा का कोई एरिया नहीं है जिसमें लिफ्टर कनाल उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई।
आज मुल जाए तेरे दोबारा, आपने आके खिला दिए, खारी पानी ने तरसे थे वे लड़किया नीचे नला दिए, सारे हरियाणे में तन्ने बिजली के कनेक्शन दिला दिए, ट्यूबवेल लोहारू सतनाली की चला।
हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचाने का बीड़ा भी बंसीलाल ने उठाया था और वो भी बिना किसी अतिरिक्त बजट के।
बिजली बोर्ड वाले उसको कहते हैं कि नहीं, ये हमारी लाइन में नहीं आता है, तुम्हारे लिए कनेक्शन लेने के लिए और उसको वहाँ पे अलग से पैसा, भाई तुम 5,000 रुपया दे तो तुम्हारे पास लाइन ले जाएंगे। तो बंसीलाल ने चारों तरफ देखा कि बड़ा उनके पास सरप्लस था, भाखड़ा में हमारा शेयर था और उसके वजह से वीवर पावर सरप्लस, मेरे ख्याल से 50,000 ट्यूबवेल के लिए जो अपने कनेक्शन के लिए किसान बैठे हुए थे उनको मिल नहीं रहा था, वो और पैसा दें 5,000, उन दिनों बहुत बड़ी बात थी कि 5,000-7,000 खुद अपनी देख कर लगाएं कनेक्शन के लिए। तो बंसीलाल ने कहा कि अच्छा तुम ये करो कि सारे गांव में बिजली पहुंचा दो, चाहे वहां कोई डिमांड नहीं है, तुम तो वहां खंभा खड़ा कर दो, एक लट्टू जला दो। उससे क्या हुआ कि सारे के सारे एलिजिबल हो गए, मेनली रूरल इलेक्ट्रिक, वहां कोई डिमांड नहीं थी गांव में कि हमको बिजली चाहिए कोई, और कईयों ने लिए भी नहीं, बाद में खैर ले लिया वो अलग बात, लेकिन उसने इसलिए कि फिर वो सारों का एलिजिबल हो गया, तो इससे बिजली बोर्ड ये ना कह पाए कि अब तुम्हारे खर्चे पे ले जाएंगे, उनकी लाइनें सब जगह पहुंच गई।
पानी, बिजली और सड़क के अलावा हरियाणा को भारत के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का श्रेय भी बंसीलाल को दिया जाता है। उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है।
बंसीलाल ने मिश्रा को कहा कि देखो मिश्रा जी, मेरे को मान लो पेशाब आता है, कार रोकी, आगे झाड़ी के पास गए, अपना मार दिया, मान लो कि आपकी वाइफ जा रही है साथ में, वो कहाँ जाएगी? तो मिश्रा जी ने कहा ये तो मैंने नहीं सोचा अभी तक। कहते नहीं तो ये सोचो, यहाँ पे ये बीच की जगह है, लोग आते हैं चंडीगढ़ से या ऊपर से कम यहाँ पर एक छोटी सी जगह बना दो जहाँ चाय मिले और अच्छे टॉयलेट्स हों। तो फिर मिश्रा जी ने सोचा कि वहाँ पे गड़े थे, उसके साथ साथ नहर के साथ साथ पूरा गड़ा हो, चारों तरफ गड़े खोद दिए। सो कहने लगे कि तो यहाँ तो एक झील भी बन सकती है बढ़िया। आगे तो वो तुम्हारी मर्जी है, झील वील बनाना कुछ बनाओ, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट्स, साफ टॉयलेट और अच्छी चाय का लोग बैठ करके चाय पी लें और ऐसी एक अच्छी सी जगह बना दो यहाँ पे रुकने के लिए। तो दिस वॉज द बर्थ ऑफ हरियाणा टूरिज्म।
बंसीलाल को अक्सर इस बात में दिलचस्पी रहती थी कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं।
भगवत दाल चीफ मिनिस्टर थे और इलेक्शंस हो रहे थे असेंबली के लिए, तो हिसार में आए तो भगवत दयाल मुझे पसंद करते थे काफ़ी, मुझे पंडित जी कहते थे, बड़ा मुझे एम्बेरसमेंट लगता था। तो खैर उन्होंने कहा कि ऐसा है इलेक्शन है और आप तो बड़ा फेयर करेंगे, लेकिन दो लोग जो हैं उनको हराना है, बंसीलाल और देवीलाल, ये नहीं आने चाहिए। तो हमने कहा हराना जीतना तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो जनता की हाथ में, और इसमें मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता। जब मैंने बंसीलाल को ज्वाइन किया तो एक लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारी ऐसी बात हुई थी भगवत दयाल से, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कैसे पता चल गया उनको, क्योंकि वहाँ तो कोई था ही नहीं। तब फिर पता चला कि जो बेरर था वो चाय सर्व कर रहा था, उसने ये सुन लिया और उसने बंसीलाल को ये कन्वे कर दिया। मैं दिल्ली आ गया था, होम मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी था, और एक महीना मुझे हुआ था। उसी रोज़ वो नया मकान लिया था तो पार्टी दी थी, कोई 12 बजे मेरे पास टेलीफोन आया बंसीलाल का। अच्छा वो इलेक्ट हो गए थे MLA, तो मैंने उनको तार भेजा कि आई होप कि आपको कैबिनेट में ले लिया जाए एज ए मिनिस्टर। तो 12 बजे टेलीफोन आया, कहने लगे मैं मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा इस वक्त क्या हो क्या, कहने लगे मुझे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, आपको आना है एज माई प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
इंदिरा गांधी और संजय गांधी के प्रति उनकी निष्ठा संपूर्ण थी। हरियाणा में मारुति लिमिटेड को जमीन दिलवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका बाद में उन्हें राजनीतिक फायदा भी मिला। कुमी कपूर अपनी किताब द एमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखती हैं।
बंसीलाल ने अपने वरिष्ठ अफसरों को हुक्म दिया कि वो दिल्ली जाकर संजय गांधी को उनकी मारुति फैक्ट्री के लिए जमीन दिलवाने में मदद करें। मारुति के लिए जिस जमीन को चुना गया वो खेती योग्य उपजाऊ जमीन थी। वहां से हथियारों का एक डिपो और एक हवाई पट्टी मात्र 1000 गज की दूरी पर थी। उन्होंने संजय गांधी की मारुति कंपनी को 290 एकड़ जमीन का कब्जा दिया। मारुति को जमीन 10,000 रुपए एकड़ के हिसाब से बेची गई, जबकि बगल वाली जमीनों का दाम 35,000 रुपए एकड़ था। जमीन के दाम को 18 किश्तों में अदा किया जाना था, लेकिन मारुति ने 2 किश्तों के बाद ही हरियाणा सरकार को बकाया देना बंद कर दिया था।
बंसीलाल पर लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर मनमानी से शासन करने का आरोप भी लगा। गुजरात और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल बीके नेहरू ने अपनी आत्मकथा नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखा है।
भारत के कुछ जमीन से जुड़े राजनीतिज्ञों में से एक बंसीलाल को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि भारत का संविधान क्या कहता है। उन्होंने ठेठ हरियाणवी अंदाज में मुझसे कहा, अरे नेहरू साहब ये सब इलेक्शन फिलेक्शन का झगड़ा खत्म कीजिए, मैं तो कहता हूँ बहन जी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है।
बंसीलाल राजनीति में इतने लिप्त थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। एक बार ललित नारायण मिश्र ने जब उन्हें अपने यहाँ दिए गए भोज में राज कपूर से मिलवाया तो वो उन्हें पहचान तक नहीं पाए।
बंसीलाल ने मूवी से कोई ताल्लुक नहीं, पिछले सबसे पहले जो लास्ट मूवी देखी तो 1940 में डॉक्टर कोटनेस कमर कहानी, तो जब राज कपूर पाए तो उन्हें राज कपूर हैं, तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अरे राज कपूर करे, अच्छा आपका बिजनेस है फरीदाबाद में, कहते नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो क्या करते हैं आप, कहते मैं एक्टर हूँ। अच्छा वहाँ गाँव नौटंकी में करते हैं कभी क्या तुम्हें इतना नहीं मालूम।
बंसीलाल को गुस्सा भी खूब आता था, इसका स्वाद उनके सचिव रहे राम वर्मा को भी चखना पड़ा था।
हमारे यहाँ हरियाणा में कोई वो स्टेशन नहीं था रेडियो का, तो यहीं दिल्ली से ही प्रसारण होता था। मैं उनके साथ आया था और वो स्क्रिप्ट बना के लाया था, तो स्क्रिप्ट उनको 2 दिन पहले दे भी दी थी, तो कहते सारा तुमने गलत लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है तुमने। मैंने कहा सर क्या गलत है, कहते देखो ये तुमने लिखा है कि बिजली जो है 2340 गांव में चली गई। कहते मैंने अभी सानी से बात की है, चेयरमैन बिजली बोर्ड, वो कहता है 2550 में गई है, तुमने ये कैसे सारा गलत लिखा हुआ है। और ये मैंने उससे चीफ इंजीनियर से बात की है, रोड वाले से, मिस्टर IC गुप्ता थे, उससे मैंने अभी बात की है, तुमने ये जो लिखा है उससे कोई 50 गाँव में ज़्यादा में, तो तुमने सारा गलत लिखा हुआ है, कैसे बोला। मैंने कहा सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा, और मैंने कहा अब जो आपने बात कर ली उसके बाद भी शायद 4 गांव में और बिजली लग गई होगी, तो मैंने कहा खास बात यह है कि ये तो डायनेमिक फिगर है, मैं जो तैयार करता हूँ वो उनकी बात से बात करके नहीं करता, दे हैव टू सेंड इट टू मी इन राइटिंग। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको काट दीजिए अपना, वो बोलिए सही है जो इसमें कुछ, तो उसको काट के बोल दीजिए। तो फिर वो बोल दिया उन्होंने, लेकिन शुंगलू ने कहा कि कुछ ये दो सेंटेंस जरा आप दोबारा बोल दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा ये तो मेरे को अभी अभी तो स्क्रिप्ट दिया है, क्या करें। कहते नहीं कोई बात नहीं आप। तो खैर उन्होंने बोल दिए, मैं हरियाणा भवन में वहाँ तक उनके साथ ही उनके कार में गया था। तो मेरे से कहते हैं उतर के, कहते देखो मिश्रा जी से बोल के और कोई नई पोस्ट तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लेना। मैंने कहा सर मैंने आज तक न किसी को बोला मेरे को क्या पोस्ट चाहिए, आपको जहाँ मर्जी आए वहाँ लगा दीजिए।
बंसीलाल अपने बेटे की शादी में बारात में खुद नहीं गए थे क्योंकि वो कट्टर आर्य समाजी थे और सादी जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। शादी के बाद उन्होंने एक प्रीति भोज जरूर दिया जिसमें उन्होंने उस समय भिवानी में डिप्टी कमिश्नर के पद पर काम कर रहे राम वर्मा को भी आमंत्रित किया था।
माय वाइफ सावित्री वो शी वाज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ पर्सन, अपना हार वार पहन के नहीं गई। तो जब वो उन्होंने देखा कि अरे छोरी तू तो नागी बुची आ गई उनको कुछ ज्यादा हरियाणवी आती भी नहीं थी, मेरे साथ आके थे। और उसको एक वो अपना यहाँ पे ये दे दिया, ये पहन, अपने हाथ से पहना दिया, छोटा मोटा हार ही होगा सो, लेकिन निकाल के अपना कहते ये तो पहन लिया, मेरे पास हुआ आई कहते ये बड़ी बदतमीजी है, कमाल है ऐसी, कहते चलो यहाँ से। माई वाइफ बनकर कोई बात नहीं, मैंने कहा ये अपनी बेटी को भी ऐसे ही कहती। तो वी स्टेड ऑन, तो जाते वक्त वो गई, मैं भी गया साथ, कहते हैं ये लो आप, नहीं कहते वापस थोड़ी लेना है, कहते हैं नहीं नहीं, कहते नहीं बेटा तू मेरी बेटी है। शी रिफ्यूज टू टेक इट बैक एंड माई वाइफ सेज कमाल की लेडी है, वेरी सिंपल लेडी।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।